मैं जब बताऊंगी तो दूसरा दूसरा नहीं पाएंगे।
देख सकते हैं
पहले हम, हाँ
देख सकते हैं
पहले जो हमने पढ़ा ना बिल्कुल शॉर्ट में हम लेंगे, मध्य लोक की बात ले लेंगे। यहाँ जहाँ से चार समाप्त हुए थे वहाँ मंगलाचरण है, उसमें से जो दूसरा दोहा है उसको हम केवल एक दूसरे दोहे को गा के फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शुद्धात्मने नमः। तीलभुवन के भगवान की वाणी में जो दिव्य ध्वनि में तीन लोक का स्वरूप आया था उसके अनुसार गणधरों ने जो शास्त्रों की रचना की थी और हमारे आचार्यों की परंपरा से वे बात आज तक भी हमें उपलब्ध है, उसमें त्रिलोकसार नामक ग्रंथ के आधार से यहाँ तीन लोक यानी पूरा जो यूनिवर्स है उसकी क्या रचना है, कौन से जीव कहाँ रहते हैं, कौन से जीव कहाँ से मरकर कहाँ जाते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और हमारा जो नॉन वैज्ञानिकों को जो नॉन भूगोल है वो बहुत ही इसमें से बहुत ही छोटा पार्ट असंख्यात भाग उनको पता है और ये पूरे विश्व की रचना यहाँ बताई गई है। हम यहाँ ये बात देख रहे हैं, ये चार्ट नंबर एक आपके पास अभी पुस्तक है तो जरा चार्ट नंबर एक लेना। तो यहाँ जो पूरा ही जो विश्व है वो लोक और अलोक मिलकर है, आपने सुना होगा कि पूरा एक अखंड अनंत प्रदेश आकाश है और उसके अनंत में भाग में लोकाकाश है और इस लोकाकाश में सभी जीव उद्गल धर्म धर्मा काल वगैरह जो द्रव्य कहाँ है तो लोकाकाश में। तो लोकाकाश की फिगर हम हर कहीं कहीं ऐसे देखते हैं पर वो मात्र फ्रंट फिगर है। लोकाकाश कैसा है तो थ्री डायमेंशनल है। तो यहाँ चार्ट नंबर एक आपके पास जो पुस्तक है उसमें जो थ्री डायमेंशनल बताया है ये सारा वो लोकाकाश है। तो उसमें 14 राज्य हाइट है उसकी, दक्षिणोत्तर 7 राज्य है और पूर्व पश्चिम जो मीना दीप हम जो हमेशा लोकाकाश का नक्शा देखते वैसा है। उसमें बीचों बीच एक कृष्ण नदी है जिसमें सारे कृष्ण जीव पाए जाते हैं उसके बाहर में, यानी 2 नंबर के चार्ट में वही फ्रंट व्यू दिखाया है। अब ये लोकाकाश के 3 भाग है, एक ऊर्ध्वलोक, एक मध्यलोक और एक अधोलोक। अधोलोक में हमने देखे एक के नीचे एक ऐसे पृथ्वियाँ, पृथ्वियाँ हमारा गोल पृथ्वी का आकार नजर के सामने नहीं लाना है। लोकाकाश के एक एक से दूसरे एक तक कही वहाँ यहाँ हम पृथ्वी कहेंगे, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है जीना सबकी, आपके साइंस की टर्मिनोलॉजी यहाँ काम की नहीं है। तो ऐसे एक के नीचे एक 7 पृथ्वियाँ हैं जिसके अंदर वो नरक भवनवासी वगैरह उसकी हमने चर्चा की कि अभी हम वो विषय छोड़कर यहाँ कुछ नया विषय लेंगे। हमारी कंटिन्यूटी अलग है, हम यहाँ मध्यलोक की कुछ बातें बताएंगे। तो हमने अधोलोक देखा, ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्गों के विमान आदि होते हैं वो ऊर्ध्वलोक की रचना भी हमने थोड़ी बार देखी थी थोड़ी बहुत, और उसकी भी अपनी चर्चा चल रही थी। अब हम यहाँ मध्यलोक में क्या है वो देखते हैं। तो ये जो पहली पृथ्वी है, पहली पृथ्वी आपका जो 7 नंबर एक है उसमें देखना है, इस सेंटर में वो लाल पीला कॉम्बिनेशन वाला आपको दिखाई देता है जहाँ फ्रंट में एक राज्य लिखा है और वो ऐसे ही पीछे की ओर मुड़ी है, वो 7 राज्य है, यानी एक राज्य बाय 7 राज्य ऐसी पहली पृथ्वी है। उसके ऊपर ये मध्यलोक, वहाँ से ऊपर जो सेंटर में मेरु पर्वत है 1,00,000 योजन ऊंचाई का, ये सारा मध्य लोक है। ऊर्ध्व लोक यानी ऊपर का, अर्ध लोक यानी नीचे का और मध्य लोक यानी सेंटर का। तो सेंटर में क्या है, तो ये पूरी एक पृथ्वी फैली हुई है 1 राज्य में 7 राज्य, ये राजू असंख्यात योजनाओं का एक माप है, बहुत ही उसकी मैग्निट्यूड बहुत ज्यादा है। उसकी चर्चा अभी नहीं करते हुए हम केवल इसी में देखेंगे। तो ये जो पृथ्वी फैली है और ऊपर से आपके साथ में ये जो ब्लू स्क्वायर दिखाई देता है नीचे तक आया हुआ, तो वो क्या है? एक राजू का एक राजू, इसको त्रसनाली कहेंगे, जो 14 राजू ऊपर से नीचे तक फैली हुई है पूरे लोका का। अब मध्य लोक में ये जो एक बाय एक राजू बाय एक राजू है, वो आपके पुस्तक में 3 नंबर का चार्ट निकालना है। यदि एक राजू बाय 7 राजू तो ये पृथ्वी फैली है, परंतु उसके सेंटर वाला जो एक राजू बाय एक राजू एरिया है उसको यहाँ सीरियस लोक लिखा है। इसमें पूरे एक राजू बाय एक राजू में उसने उतने ही डायमीटर वाला एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल के अंदर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक से असंख्यात द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं। ये जो यहाँ जो लिखा है स्वयंभू रमण समुद्र, ब्लू कलर लिखा है स्वयंभू रमण समुद्र, और उसके अंदर जो ग्रीन दिखाया है वो स्वयंभू रमण द्वीप। ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी पुस्तकों में देखना। ये स्वयंभू रमण समुद्र 1/4 राजू लिखा है और अंदर स्वयंभू रमण द्वीप पूरा है वो 1/8 राजू है। पर तीन नंबर
नीचे से
7 नंबर से। हाँ, तो ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है वो एक ही समुद्र इतना बड़ा है। और कैसा है वो? वलयाकृति है। और उसके अंदर क्या है? वलय ने पूरा कंकणाकृति राउंड है। उसके अंदर जो ग्रीन कलर है उसमें भी डबल ग्रीन है, और वो डबल ग्रीन के सेंटर में एक ऐसी वेवी लाइन है। मिला सबको पुस्तक है ना आपके पास? तो ये पूरा ही ग्रीन जो एरिया है वो स्वयंभू रमण द्वीप है। अभी तो केवल नाम सुनना, बाकी इसके और विशेषता बताएंगे। तो ये उसके सेंटर में जो लाइन है वो एक पर्वत है, वो भी ऐसे ही राउंड है। तो ये पूरा ही द्वीप हम कंसीडर करेंगे। स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है? 1/4 राजू, और उसका आधा स्वयंभू रमण द्वीप 1/8 राजू। इसका अर्थ क्या है? हम बाहर से अंदर की ओर देखेंगे तो बाहरी समुद्र उसके अंदर का द्वीप उसका आधा, उसके अंदर समुद्र है उससे आधा, उसके अंदर द्वीप है उससे आधा, उसके इस तरह से आधा आधा। अब हम सेंटर से बाहर की ओर देखेंगे, हम जहाँ रहते हैं वो है जम्बू द्वीप। आपने नाम तो सुना होगा, मुझे चार्ट आया यहाँ पर, मैं अभी बता रही थी। ये पूरा है स्वयंभू रमण समुद्र है इतना बड़ा, और ये पूरा ऐसा गोलाकार है, कंकणाकृति जिसको कहेंगे, उसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यहाँ दिखाया है। तो ये कितना है? ये 1/4 है, तो ये उसका आधा 1/8 है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। और ये बीच में जो ये राउंड आपको दिखाया गया है वेवी लाइन, ये है स्वयं प्रभ नाम का पर्वत। तो ये क्यों दिखाया? तो देखो अभी ये आधा अंदर का द्वीप है और ये आधा बाहर का द्वीप है। तो ये स्वयंभू रमण द्वीप का ये बाहरी ओर आधा हिस्सा और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, ये क्या है? यहाँ एक कर्म भूमि है, यहाँ मनुष्य नहीं रहते, मात्र तीरेंच रहते हैं, परंतु द्विंद्रिया दीजिए यहाँ भी पाए जाते हैं। एक तो ढाई द्वीप में जहाँ जहाँ कर्म भूमि है, वो कर्म भूमि क्या भोग भूमि क्या इसको देखेंगे, और ये द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जीव मात्र कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं, ना भोग भूमि में होते हैं, ना स्वर्ग में होते हैं, ना नरक में। पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय तो मनुष्य कहाँ रहेंगे? तो मनुष्य लोक में रहेंगे, मनुष्य लोक किसको कहना वो देखेंगे। परंतु तीजेंद्र जो कर्म भूमि के तीजेंद्र है वो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये बहुत बड़ी एरिया है, और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी अवगाहना वाले सारे जो जीव पाए जाएंगे। ये शंख 12-12 योजन वाले शंख है, हजार हजार योजन वाले वहाँ महामत्स्य है, ऐसी वो बड़ी बड़ी अवगाहना बड़ी बड़ी साइज वाले सारे जीव ये स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में पाए जाए। अब हम आगे की बात देखेंगे, क्योंकि हमें जम्बू द्वीप और भरत क्षेत्र संबंधी कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब 4 नंबर का चार्ट निकालना आपके पास, मीर आप भी हमें जरा 4 नंबर का चार्ट दिखाइएगी। तो ये सेंटर से शुरू करते हैं, ये हमने बाहर से देखा, बाहरी सबसे बाहरी समुद्र और सबसे बाहरी द्वीप देखा। मध्य लोक में क्या है, बस एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे कितने पर असंख्यात है। तो यहाँ सबसे छोटा बीच में जो है मात्र यहाँ पीला डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये राम योजन का जम्बूद्वीप है। एक राम योजन उसका डायमीटर है, उसकी त्रिज्या रेडियस कितनी होगी, उसके आधी होगी 50,000 योजन। तो ये जो बीच में सेंटर का जो पीला है वो है जम्बूद्वीप, और ये उसके राउंड यहाँ तो ग्रे दिखाई दे रहा है परंतु ये आपके बुक में इसको नीला दिखेगा। ये लवण समुद्र है, उसके बाद ये जो कोई अभी उसमें ड्राइंग में क्या क्या है उसको बाद में देखेंगे। इतनी एरिया है ये राउंड, ये आगे वाला द्वीप है, ये उसका नाम है धाकी खंड, धाकी खंड। पहला कौन सा था, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, ये धाकी खंड। इसके आगे इतना बड़ा है वो कालोदी समुद्र कहो या कालोदक समुद्र कहो, तो एक ही बात है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर पूरा आगे के समुद्र तक, ये पूरा ये यहाँ तक फैला हुआ, ये ड्राइंग तो यहाँ तक ही बनाया परंतु पूरा यहाँ तक जो फैला हुआ है वो आगे का द्वीप, उसका नाम है पुष्कर द्वीप। क्या कहेगा मैं, एक जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, धाकी खंड द्वीप, फिर ये कालोदक समुद्र, और फिर ये पूरा पुष्कर द्वीप यहाँ तक है। विशेषता क्या है, ये जम्बू द्वीप है ना, उसका विस्तार यानी उसके डायमीटर 1,00,000 योजन है। रेडियस देखेंगे तो 50,000 योजन ही है, 0.5 लाख, तो ये 1,00,000 है। तो इसका एक बाजू का विस्तार, इसको हम डायमीटर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरा राउंड है और सेंटर उसका द्वीप है, तो ये पूरा सराउंडेड बाय समुद्र है और समुद्र का एक दिशा में विस्तार है वो 2,00,000। अब उसके आगे का द्वीप 4,00,000 है, उसके आगे का समुद्र 8,00,000 है, और उसके आगे का पूरा द्वीप 16,00,000 है। ऐसे 16,00,000, उसके आगे का 32,00,000, उसके आगे का 64,00,000, उसके आगे का
100,00,000,
2 गुना 2 गुना 2 गुना योजन, लाख योजन। केवल आप ये मुझे इसमें देखना डोर पर देखो, ये 1,00,000 योजन उसका डायमीटर है, ये जम्मू द्वीप है, सेंटर से एक बार जो 0.5 लाख इधर 0.5 लाख, तो हम केवल सेंटर से देखेंगे तो ये 0.5 लाख हुआ। ये कौन सा है, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र 2,00,000
योजन,
2,00,000 योजन। देखो ये आधे से ये 2 कितना है, डेढ़ जाना है, मैंने हाफ एक्स्ट्रा है, अब ये हाफ प्लस 2 ढाई हो गया, उसमें डेढ़ मिला तो आगे का मिलेगा 4,00,000। क्या केवल इससे कंपेयर करेंगे 2 से 4,00,000 होता है, और यानी पूरे दोनों मिलकर जितना है ना 2.5 लाख और ये 4,00,000। अब ये आधा, ये 2, ये 4, 4 2 6, 6.5 हुआ, और उसके आगे का 8,00,000 है। यानी ये पूरा केंद्र से ये सभी द्वीप मिलकर, द्वीप समुद्र मिलकर जितना होता है उससे अकेला एक ज्यादा है। यहाँ से सेंटर से यहाँ तक जितना है उससे ये अकेला ज्यादा है। तो हम क्या समझते हैं, हमने सेंटर से असंख्या द्वीप समुद्र देखे कहाँ तक, स्वयंभू रमण तक, तो उससे अकेला स्वयंभू रमण समुद्र आखिर वाला ज्यादा है। हमें इतना ही देखना है कि अंदर के सभी इकट्ठा करो सेंटर से, उससे भी आगे वाला समुद्र या द्वीप जो कुछ होगा वो ज्यादा होता है। अभी हम थोड़ा आपको पूछेंगे, उस दिन हमने लास्ट टाइम नंदीश्वर द्वीप की पूजा पढ़ी थी है ना, तो नंदीश्वर द्वीप का नंबर कौन सा है, देखो पहला है जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, ये दूसरा द्वीप, फिर एक समुद्र, तीसरा द्वीप, फिर एक समुद्र, चौथा द्वीप, ऐसे 7 द्वीप और 7 समुद्र हुए बराबर। और नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है, यानी वैसा उसका नंबर 15वां आता है। आप यहाँ साइंटिस्ट सब बैठे हैं ना, अपना कैलकुलेटर निकालना बाहर। देखो ये है 1,00,000, यहाँ तो आधा ही है परंतु हम पूरा डायमीटर लिखते 1,00,000 है, और ये दूसरे अभी इसका दूसरा नंबर है तो ये 2,00,000 है, ये तीसरा नंबर है। वैसे 20 समुद्रों को टोटल हम नंबर देंगे, ये तीसरा है 4,00,000 है, चौथा है 8,00,000 है, पांचवा है 16,00,000 है। क्या हो रहा है, डबल डबल। देखो ये पहले से एक बार डबल हुआ, केवल 2 हुआ, दूसरा जो ये इसका नंबर तीसरा है 2 रेज टू 2, थर्ड है नंबर, चौथा नंबर है, आठ लाख है, टू रेस टू थ्री, पांचवा है इसका नंबर, टू रेस टू फोर। तो नंदीश्वर द्वीप आठवा द्वीप है, यानी बीच में सात द्वीप सात समुद्र हुए, तो टोटल क्या, तो टू रेस टू फोर्टीन हुआ, कितना होता है, इसकी संख्या कितनी, कैलकुलेटर निकालो। और पूजा आती है तो पूजा की जयमाला याद करो। हाँ बोलो, नरक तो अधोलोक में, ये हम रहते हैं ना, मध्य लोक है। हाँ हम सेंटर में है, और वी आर ओके, जब तक अपना कौन है ये पहचाना तो ओके है। हम अपने को पहचानेंगे तब तक ठीक है। हाँ हाँ बोलो, सुरेश को फोर्टीन कितना हुआ, आपने क्या किया उसको, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू फोर्टीन टाइम्स करो, दसवें पर आ गए, फोर्टीन पर आना है आपको, फोर्टीन पर आना है। अभी आप जयमाला का जयमाला निकालो, नंबर योजन है, चार कोष का योजन होता है, और ये महायोजन है वो 500 गुना 2000 कोष, 1000 माइल। नंदीश्वर द्वीप की पूजा है ना, एक तो त्रेसठ कोटि जो जन्म लाख चौरासिया एक दिश मेरा, 163 करोड़ 84 लाख योजन, 16384 16384 टू रेस टू 14 एंड टू रेस टू 16 65,536। अरे हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हैं, आपको और भी आगे बहुत चल रहे, लेकिन कोई हमारे पास है ना जिनागम में हो। तो देख हमने क्या देखा, तो ये तो हम 15वें तक आए, यानी 8वें द्वीप तक आए, 8वें द्वीप तक आए तो हम उसको गिन नहीं सकते। हम टोटल द्वीप और संख्या, टोटल द्वीप और समुद्रों की संख्या बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ये टोटल कितने द्वीप समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र तक कितने टोटल द्वीप और समुद्र संख्या से, यानी ये पहला दूसरा तीसरा, हम अभी ये 15वां देखा हमने, ऐसे द्वीप प्लस समुद्र मिलकर कितने हैं उसकी संख्या देखेंगे। अभी उसके लिए एक हमारे पास माप है पल्लय, पल्लय में भी तीन टाइप के पल्लय होते हैं, एक व्यवहार पल्लय, एक उद्धार पल्लय, अद्धा पल्लय। हमें उद्धार पल्लय से मतलब है, उसमें द्वीप और समुद्रों की संख्या गिनेंगे। तो पहले ऑर्डिनरी यानी व्यवहार पल्लय क्या है उसको देखेंगे, एक योजन यानी 4000 मील वाला, 4000 मील का डायमीटर का, और उतना ही डीप एक खड्डा करना, हाँ उतना ही डायमीटर ऐसा गोल गड्ढा करना, और उसमें
कहाँ करना बंद
बुद्धि में, या आगे किसी, आगे किसी द्वीप में जाकर बोलना देव को करने के लिए, वो तो देव कर सकते हैं, बड़े बड़े द्वीपों में इतनी जगह मिल रही है, अपने यहाँ कहाँ मिलने वाली है। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा करना और रोम खंडों से भर देना, रोम खंड भू भूमि के बाद अत्यंत मुलायम होते हैं न्यू बॉर्न के, तो वहाँ उसका बाल का अग्रभाग टिप जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो गए उससे वो खचाखच भर देगा। 100 साल के बाद एक टुकड़ा निकालना, जब पूरा गड्ढा खाली होगा तब हम कहेंगे वो ये व्यवहार पल्लय है। इस व्यवहार पल्लय का एक एक रोम खंड को गिना हमने, उस एक एक को कितने से मल्टीप्लाई करना, असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय है उससे गुणा करना, तो जो आएगा वो उद्धार पल्लय का प्रमाण आएगा। अभी देखो उसमें मैग्नीट्यूड देखना, समय किसको कहना, तो हमें जो सेकंड मालूम है उसका स्मॉलेस्ट मार्क कितना मालूम है आपको, नैनो सेकंड, कितना कितना करते टुकड़े उसके, टू रेस टू माइनस टेन कुछ है ना, माइनस नाइन, अच्छा यानी बहुत छोटा है। तो हमारे जो मालूम है एक सेकंड, उसमें तो हम अनेक कोड़ा कोड़ी आवली होती है, कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुना करोड़ आवली, दैट इज ऑल्सो यूनिट। एक आवली में कितने समय होते हैं, तो कितने असंख्यात समय होते हैं, वो आपको समझाया था यहाँ, जगन नियुक्त संख्या का, यानी मिनिमम असंख्यात रेस टू मिनिमम असंख्यात इज इक्वल टू एक आउली ऐसी, हाँ इतने समय क्या है मिनिमम असंख्यात का जो माप है उसको मिनिमम असंख्यात रेस करो, यानी उतनी बार लिखकर आपस में गुणा करो तो जो माप आएगा उतने समय एक आवली में होते, तो समय कितना सूक्ष्म होगा। और ऐसे अनेक कोड़ा कोड़ी आवली एक सेकंड में होती है, तो इतना समय सूक्ष्म है, तो ये एक सेकंड में इतने समय, तो एक घंटे में कितने होंगे, एक साल में कितने होंगे, और असंख्यात करोड़ वर्ष जो हम देख रहे हैं उसमें कितने होंगे, और वो पल्ले में जो हम माप देख रहे हैं उसमें कितने होंगे। तो हमें तो संख्या नापनी है, तो हमें ये पता हो गया कि एक उद्धार पल्ले में कितने समय है। और ऐसे अभी हमें क्या गिनना है, तो हमें द्वीप और समुद्रों की संख्या गिननी है, एक दो तीन चार ऐसे। अगर हम केवल एक सेकंड में जितने समय होते हैं उतने भी अगर हम द्वीप समुद्र गिनेंगे तो असंख्यात हो जाएंगे। यहाँ कितने हैं द्वीप समुद्र, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले, इस अनइमेजिनेबल संख्या है, परंतु ये सर्वज्ञ भगवान ने जानकर बताई हुई संख्या
है।
बिल्कुल इसका बिल्कुल ये उन्हीं का बताया हुआ है, हमें जो नॉन भूगोल है वो बहुत कम है। हमारा जो है यूनियन जिसको हम प्लैनेट कहते हैं, तो जमीन के लेवल से 790 योजन से 900 योजन तक का जो पट्टा है उतने में ये सारे ग्रह सारे नक्षत्र है, और उसी को हम यूनियन समझ रहे हैं, परंतु मध्य लोग ही लाख योजन ऊंचाई का है, और असंख्यात योजनाओं का एक राज्य होता है, इसे 14 राज्य तो पूरी लोकाकार की रचना है। तो ये सर्वज्ञ भगवान से, तो हमें तो साइंटिस्ट की महिमा आती आने दो, हमें कुछ कहना नहीं है, किसको कहना साइंटिस्ट बेटा, नहीं जिसकी खोज जिसकी खोज पूरी नहीं होती वो साइंटिस्ट, और जिसको अभी खोजने के लिए कुछ नहीं बाकी रहा वो है सर्वज्ञ भगवान। साइंटिस्ट भी क्या करता
है,
कोड़ा कोड़ी नहीं करोड़ गुना करोड़, करोड़ में कितने डिजिट से गए, 7, कोड़ा कोड़ी में 14, कोड़ा कोड़ी करोड़ गुना करोड़, ये करोड़ कोड़ा कोड़ी, 25 कोड़ा कोड़ी में 25 करोड़ गुना 1 करोड़, वो होगा 25 कोड़ा कोड़ी,
कितने पल्ले
उतने पल्ले, वो आगे उद्धार पल्ले का यूनिट उसके साथ लगा देना, इतने द्वीप और समुद्र है, तो दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना करते हैं, हमने 14 बार 2 raised to 14 किया, 2 raised to 14 किया तो कितना आया, अभी 2 raised to कितना करना, वो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले है ना, उतना रेस टू करो, तो हाँ तो हमें तो ये तो कल्पना की बातें लगती, पहले में पहले बिलीव नहीं होता, परंतु तो ये स्वयंपुर समुद्र कितने नंबर का है, और वो दो गुना दो गुना दो गुना इतना बड़ा वो 1/4 राज्य होता है, तो एक राज्य कितना बड़ा होगा इसको भी इमेजिन कर सकते हैं ना, थोड़ा एहसास तो होता है। तो ऐसे 14 राज्य जो हाइट वाला लोकाकाश है उसकी पूरी रचना यहाँ बताई। तो ये 4 नंबर के चार्ट में तो हमने ढाई द्वीप जो लिखा ना, अभी मनुष्य लोग कितना है उसको देखेंगे, मनुष्य लोग में एक है जम्बू द्वीप, वो है 1 लाख योजन वाला, ये लवण समुद्र, फिर उसके आगे ये इधर और इधर ये सब मिलकर ये धार की खंड है, उसके आगे ये कालोदक समुद्र, और उसके आगे ये आधा ही पुष्कर लेना, पुष्कर द्वीप तो यहाँ तक फैला है परंतु उसमें से आधा ही लेना, ये पूरा देखो ये 1 लाख था, ये 2 था, ये 4 था, ये 8 था, और ये 16 था, 16 में से 8 ही लेना है। और इस सरांगेर भाई ये जो जिग-जैग लाइन है उसको कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत, ये मनुष्य क्षेत्र की लिमिट है, इसके बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। आप कहेंगे हमारे रॉकेट जा रहे हैं, रॉकेट जो जा रहे हैं वो ऐसे हाइट पर जा रहे हैं, वो भी 700 योजन 800 योजन के अंदर जा रहे हैं, ख्याल में ऐसा नहीं बाहर जा सकते, कोई देव भी आकर मनुष्य को इस लाइन के बाहर नहीं ले जा सकता। ये कितने एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 1 है और ये 2 और 2, यानी यहाँ तक 5 हुए, और फिर यहाँ दोनों की ओर से वो 4 4 8 मिलाए, फिर ये 8 और 8 16 मिलाए, और इसे और 8 और 16 मिलाए, टोटल कितने हुए, 45 लाख योजन। 45 लाख यूजन वाला डायमीटर वाला हमारा मनुष्य क्षेत्र है, इसी में मनुष्य पाए जाते हैं। अब उसमें वो अपने भरत क्षेत्र भी आ गए, ऐरावत भी आ गए, विदेह क्षेत्र सभी आ गए, पांच मेरु संबंधी पांच विदेह सब इसमें आ जाएंगे। और यहाँ इसमें ही मनुष्य पाए जाते हैं, इससे बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते। जब शास्त्रों में भी मनुष्यों की संख्या आती है पर्याप्त मनुष्यों की, हमें तो ऐसा लगे वो तो उनकी संख्या प्रमाण बताए 29 डिजिट, और हमें तो लगता है हमारे यहाँ इतने मनुष्य बढ़ रहे हैं, आप कहते मनुष्य बहुत इतना दुर्लभ है। हाँ हो सकता है कि अपने यहाँ अभी बढ़ रहे हैं, पर अन्य कहीं वो कम हो रहे कि नहीं, पूरे मनुष्य लोग की संख्या ठीक है, मैक्सिमम संख्या उसमें से बताई जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये तो बीच में जम्बू द्वीप है, ये लवण समुद्र है, ये जो आगे के द्वीप, तो हम केवल जम्बू द्वीप में अभी क्या क्या है देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत बार कर्म भूमि भोग भूमि ऐसे नाम तो बहुत सुने हैं, तो उसका थोड़ा सा अंदाजा लेते हैं कि हम बिल्कुल आपको थोड़ी एक सैंपल बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तार से लिया हुआ है, फिर भी हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखने की कोशिश करेंगे। हाँ ज्यादा सुनना है तो चल, ये पूरे जो 20 घंटे में बोली थी उसके VCD भी अवेलेबल है, आपको लेनी है तो पूरा। ये हम कोई, हाँ हम कोई यहाँ इसके लिए नहीं आए हैं, बिजनेस के लिए, समझ में आई? ये पुस्तक हमने देखा होगा आपको, अंदर प्राइस कितनी लिखी है और ये कैसे चार्ट बनाए, 50 रुपए में हम इसको देते हैं, और सीढ़ी वगैरह भी होती है,
कवर नहीं बनता,
कवर भी नहीं बनता है 50 रुपए में। बस हमें इसी इच्छा है कि ये सब जाने जिनेन्द्र भगवान की बात ख्याल जाती है, बस और संसारिक प्रयोजन के लिए इसमें से एक नया पैसा हम नहीं यूज करते, जो कुछ आता है इसी में डाल क्या ना। जो कोई बहुत अनेक सैकड़ों ग्रंथों का हमारा अभ्यास भी हुआ, उसके रिकॉर्डिंग भी चलती है, उसकी हम सीरीज भी बना के लोग आनंद से ले जाते हैं, घर में बैठे बैठे पूरा बेसिक से सारे प्रवचन सुन सकते हैं, उसमें हमारा कुछ ऐसा ये नहीं है कि हमें कुछ प्रसिद्धि चाहिए या पैसा चाहिए। अरे हमारा तो रेगुलर बिजनेस छोड़कर हम इसमें आए स्वाध्याय करने के लिए, और हम तो यहाँ पर भी नहीं आना चाहते थे। महेंद्र भाई को पूछो, उनके 25 तो टेलीफोन आए होंगे बार 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 बार, इसीलिए अभी बार बंद करो अभी टेलीफोन, अभी आते हैं ऐसा कहना। देखो हम 5 नंबर को देखेंगे, कहाँ है
पांच
जम्मू द्वीप को जरा देखेंगे, आप भी आपके सामने रख सकते जम्मू द्वीप। देखो पुस्तक में तो बहुत डिटेल पता ही है, हम थोड़े में शॉर्ट में इसको जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको थोड़े उससे परिचित हो जाए नामों से। ये जम्मू द्वीप हमने देखा था 1 लाख योजन यहाँ से यहाँ तक है डायमीटर, ऐसा भी 1 लाख योजन है, अभी ये डिस्टॉर्टेड फिगर आ गई है, परंतु वो राउंड है, आपके सामने जो फिगर है वो तो राउंड है पुस्तक में। तो ये पूरा यहाँ से 1 लाख योजन है, यहाँ से अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो भी 1 लाख योजन, इसको हम दक्षिणोत्तर कहेंगे, इसको पूर्व पश्चिम कहेंगे। तो इसमें क्या क्या रचना है उसको हम देखेंगे। शुरू में ये जो 1 लाख योजन जो है यहाँ से यहाँ तक, उसके 190 भाग करेंगे, 190 तो एक भाग प्रमाण। नीचे ये जो पीला लाइन दिख रही है ना, पीला पट्टा, यह है भरत क्षेत्र, 1 लाख / 190 तो अभी 526 समथिंग यहाँ ये आता है, ये इसके वर्टिकल हाइट और ऐसा तो लंबा फैला हुआ है, ये भरत क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं। इसको हम एक भाग प्रमाण देखेंगे, तो उसके आगे ये हिमवान पर्वत है। देखो ये बाजू सारे पर्वतों के नाम और उस पर्वतों के ऊपर पाए जाने वाले सरोवर बताए, और एक बाजू क्षेत्रों के नाम और उसमें बहने वाली नदियों के नाम बताए। तो ये भरत क्षेत्र को हम एक भाग प्रमाण देखेंगे, तो उसका जो हिमवान पर्वत है यहाँ का, तो ये जिग-जैग लाइन केवल है क्योंकि इतना जगह नहीं थी कि जहाँ ड्राइंग करे, फिर भी ड्राइंग प्रोपोर्शनेट में निकालने की कोशिश की है। तो ये हिमवान पर्वत है, उसके आगे जो क्षेत्र है उसका नाम है हिमवत क्षेत्र, उसके आगे महाहिमवान पर्वत, उससे डबल है, मैंने 1 है, ये 2 है, फिर ये 4 है, तो ये 8 है, उसके बाद ये हरि क्षेत्र है। देखो ये भरत क्षेत्र है, उसके ऊपर पर्वत है, यहाँ जो क्षेत्र है वो जघन्य भोग भूमि है, उसके ऊपर ये पर्वत है, उसके ऊपर उसके लबल ये जो हरि क्षेत्र है वहाँ मध्यम भूभूमि है, उसके ऊपर ये पर्वत है उससे दोगुना, उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें ये जो नीचे देवकुरु लिखा है वो उत्तम भूभूमि है और ऊपर उत्तर कुरु लिखा है वो भी ऊपर के भाग में उत्तम भूमि। यहाँ ऐसा ही ऊपर जो है ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ पर्वत है, फिर यहाँ जगन्य भूभूमि वाला क्षेत्र है, फिर पर्वत है, ये मध्यम भूभूमि, ये भूभूमि है, ये कॉन्स्टेंट भूभूमि है। हमारे भरत क्षेत्र में छह कालों का जो परिवर्तन होता है, हमारे यहाँ ही पहले काल में उत्तम भूभूमि थी, दूसरे काल में हमारे यहाँ मध्यम भूभूमि थी, हमारे यहाँ तीसरे काल में जगन्य भूभूमि, जगन्य भूभूमि का काल समाप्त होने को आया तो यहाँ चौथा काल आने को शुरू हुआ। वहाँ क्या क्या होता है वो सारे पुस्तक में 14 खुलकर कैसे होते हैं, भूभूमि से कर्म भूमि आई तो क्या क्या भौगोलिक चेंजेस होते हैं, पहले सूर्य चांद नहीं दिखते थे फिर दिखने लगे क्योंकि पहले तो कल्प वृक्ष से सब प्रकाश मिलता था, तो एक एक खुलकर के काल में क्या क्या हुआ वो सब बातें इसमें है आगे सब लिखी है। क्योंकि पहले तो जुगलिया जन्म के थे भूभूमियों में और एक पुत्र एक पुत्री जन्मी और माँ बाप मर गए, इन्हें मुंह में ही नहीं देखते थे पुत्र, बाद में तो वो तो जीने लगे तो पुत्र को कैसा क्या करना वो घबराने लगे, तो ये सारी बातें सिखाते सिखाते आगे के कुलकरों ने वो सारी, फिर आदिनाथ का वहाँ तक 14 कुलकर हो। अभी तो हम ये भूगोल की बात देखेंगे, तो ये एक भाग प्रमाण, दो भाग प्रमाण, चार भाग, आठ भाग, 16 भाग और ये 32 भाग एक बार इधर से भी देखेंगे तो एक फिर दो फिर चार फिर आठ 16 और ये 32 भाग, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे हम 64 भाग प्रमाण हो जाता। तो यहाँ तो हमने केवल भरत देखा, इधर ऊपर ऐरावत देखा और फिर ये जगन्य मध्यम और उत्तम भूभूमि देखी ऊपर से ऐसा ही। अब विदेह क्षेत्र कहाँ है वो देखेंगे, ये सेंटर में सुमेरु लिखा है तो सुमेरु ये बेस उसका ये जो गोल दिखाई देता है ना उसका क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्रॉस सेक्शन जो यहाँ लिखा है ये यहाँ से यहाँ 10,000 योजन का है, यानी इसका व्यास डायमीटर 10,000 योजन का है और यहाँ से ऐसे गजदंत पर्वत है यहाँ से यहाँ तक, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ कोई वन वगैरह है और ये जो यहाँ दीवार जैसी यहाँ दोनों ओर रचना दिखाई दे रही है, यहाँ से आगे विदेह क्षेत्र, यहाँ से आगे यहाँ विदेह क्षेत्र, आपने महाविदेह महाविदेह सुना था और लोगों को महाविदेह में जन्म लेने की बहुत इच्छा भी है ना, तो अभी देख तो लो कहाँ जाके जन्मना है, क्यों जन्मना है, क्योंकि श्रीमंदर स्वामी है तो क्या करेंगे आपको मोक्ष दिला देंगे, तो हाँ वहाँ से मोक्ष जा सकते, तो ऐसे तो 20 तीर्थंकर है, श्रीमंदर को ही क्यों चुना आपने, हाँ वो ऐसे 20 तो हमेशा रहते, ये भरत क्षेत्र ये श्रीमंदर कहाँ है मालूम है आपको, भरत किसा है, श्रीमंदर इधर है और जुगमंदर इधर है, जुगमंदर नजदीक है, श्रीमंदर जुगमंदर बाहू और सुबाहू, तो उनका तो नाम है मालूम नहीं है। अब विदेह क्षेत्र में बाई चांस जन्म है तो अभी हम देखेंगे एक एक विदेह में भी एक आर्यखंड और 5 मलेच्छखंड है, और वहाँ के मलेच्छखंड में उत्पन्न हुए तो वहाँ कोई तीर्थंकर का उद्देश्य नहीं मिलने वाला, किसी क्षेत्र के कारण मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो अपने आत्मा का आश्रय से होता है जो हम यहाँ भी कर सकते हैं, हमने मान लिया कि वहाँ जाने से हमको मिला और यहाँ जाना चाहते ना तो वहाँ कौन जाएगा, यहाँ जो इच्छा दृष्टि रहेगा वही वहाँ जा सकता है। अभी यहाँ से पंचम काल से यहाँ मनुष्य पर्याय से दोबारा मनुष्य होना है तो इच्छा दृष्टि रहना पड़ेगा, समय दृष्टि होगा तो देव में जाएगा, अब बहुत सारे नियम है अभी आपको क्या बताए आप उनको पूछना हम आपको ठीक बता देंगे कैसे जल्दी दे मोक्ष जाना कहाँ पर, हाँ ये जम्बू द्वीप में, ये धाई द्वीप में सर्वत्र से अरिहंत होकर मोक्ष जा सकते, क्योंकि किसी क्षेत्र में से किसी मुनिराज को उठाकर देवगति के देव उनको पकड़ लेते कोई द्वेष होगा तो समुद्रों में से भी वो ऊपर चल के सिद्ध हो जाते, चल करें वही जही छूट जाती है, निर्वाण होता है वो ऊपर सिद्धालय में विराजमान। परंतु अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में यहाँ पंचम काल चल रहा है, अभी यहाँ तो मुनियों के पुरुषार्थ हो सकता है, यहाँ केवल यहाँ अभी नहीं है, परंतु विधेय क्षेत्र में अभी ये विधेय भी देखेंगे हम। देखो ये यहाँ से लेकर पूरा ये विधेय है, परंतु ये विधेय में से एक नदी बह रही है, तो उसके उत्तर में और दक्षिण में यहाँ पर भी उत्तर दक्षिण चार भाग हो गए ना, ये एक मेरु संबंधी, ये यहाँ के पूर्व की ओर, पूर्व विधेय, पूर्व विधेय में उत्तर, पूर्व विधेय में दक्षिण, ये पश्चिम विधेय में दक्षिण, पश्चिम विधेय उत्तर, और एक एक के यहाँ आठ आठ भाग विधेय। अभी कौन से पर्वत है, कौन सी नदी है, उनके सब नाम दिए हैं आपकी पुस्तकों में। तो ये जो आठ यहाँ आठ यहाँ, ये आठ यहाँ और आठ यहाँ, यानी एक मेरु संबंधी 832 विधेय क्षेत्र है। और अभी वर्तमान में यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, चार तीर्थंकर एक मेरु संबंधी है। मेरु कितने देखे हमने, पांच मेरु, और पांच मेरु के हरेक के चार, ऐसे अभी 20 तीर्थंकर कांस्टेंट होते ही होते हैं। एक चले जाते तो वहाँ दूसरे तीर्थंकर होते हैं वहाँ, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि ये आठों में एक एक करके आठ तीर्थंकर, यहाँ यहाँ आठ, यहाँ आठ, तो एक मेरु संबंधी 32 तीर्थंकर, 32 विधेय में 32 तीर्थंकर, तो पूरे ही पांचों मेरु संबंधी कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। अब यहाँ भरत क्षेत्र का एक और यहाँ ऐरावत का एक, ऐसे पांच भरत भी है, क्योंकि आगे के द्वीपों की हमने आपको बताया नहीं अभी, तो पांच, हाँ 10, वो 170 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं एट सम टाइम। कभी हुए थे आपको मालूम है, हाँ यहाँ जब अजितनाथ भगवान हुए थे तब सर्वत्र एक एक ऐसे 170 तीर्थंकर हुए थे। तो ये विधेय क्षेत्र, क्योंकि हम तो जन्म लेना चाहते हैं ना, अभी मर के आपको कैसा डिसाइड करेंगे कहाँ जाना कौन से। देखो हम जो जो परिणाम करते हैं वैसे कर्म सहज बनते हैं, और वैसा उस जीव का सब कुछ, हाँ सब विधेय मिलन हो जाता है। विधेय में जन्मना चाहते हैं परंतु कार्य तो कुछ अलग ही कर रहे हैं, क्यों हा? कोई न्याय करने वाला है, ऑटोमेटिक न्याय है, ऑटोमेटिक है। देखो जीव जैसे कर्म बांधा है, जैसे परिणाम करता है वैसे ही कर्म सहज रूप से बनते हैं, और उस कर्म की उदय में वैसे ही सहज योग्यता बनती है। किस माँ बाप के पेट में जन्मना है वो भी निश्चित है कि नहीं, आदिनाथ भगवान ने कहा था ये मारी थी जाके किसका पुत्र होगा, कृष्णा के पेट में जन्मेगा, तो नक्की ना उनकी मैरिज होगी, तो सिद्धार्थ ने उनको रिफ्यूज किया होगा तो क्या होता। ऐसा होता ही नहीं, सब कुछ निश्चित है। क्यों तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सर्वज्ञता यहाँ तो, ये तो सारे ऐसे अनंतानंत लोकाकाश और अलोकाकाश होते तो भी केवल यहाँ के अनंत विभाग में जानने की उनकी शक्ति है, प्रकट शक्ति, इतनी ये ज्ञान की शक्ति कि उनके पास में हमारे पास सामर्थ्य पड़ी है, अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे तो क्या करें। भूगोल इसका चिंतन तो मुनियों के मुख्य रूप से होता है, परंतु हमें तो इतना तो पता है कि इस विश्व में कितने प्रकार के जीव है, कहाँ रहते हैं, और हम ये सभी ऐसा एक भी प्रदेश नहीं कि जहाँ हमने अनंतों बार जन्म मरण नहीं किया, क्योंकि हम कब से तो अनादि से, नो एंड, नो बिगिनिंग नो एंड, हाँ क्योंकि हम, हमारा एग्जिस्टेंस छोटा ही हमने गलत माना है, क्योंकि हमने हम किसको माना है, मनुष्य पर्याय को, तो हमारा एग्जिस्टेंस छोटा है, परंतु हमारा एग्जिस्टेंस कितना है, अनादि से अनंत काल तक, हमारा एग्जिस्टेंस अनादि से अनंत काल तक है, और उस एग्जिस्टेंस के लिए हमने कितना प्लानिंग किया, हम मनुष्य पर्याय की ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको इतना पढ़ना है, इतना सर्विस करना है, इतना कमाना है, इतना हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि हम किसी के हाथ आगे में हमें हाथ नहीं फैलाना है, तो हमें आपके अगले एग्जिस्टेंस के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, वो हमने कभी सोचा ही नहीं, क्या मनुष्य इतना ही अपना एग्जिस्टेंस है, तो हमारा एग्जिस्टेंस तो फॉर एवर है, तो ये फॉर एवर तो किस फॉर्म में, मनुष्य फॉर्म में तो नहीं है, तो हम तो आत्मा है, जीव है, प्योर जीव सब्सटेंस, तो उसके लिए हमारा कुछ प्रयत्न है कि नहीं, क्योंकि हम क्या है, हम मनुष्य इतना ही मानते हैं और इसके लिए हमने इतनी कमाई की, परंतु हर समय जो परिणाम हो रहा है, हमारा परिणाम पैसे मिलेंगे तो पूर्व के पुण्य से, परंतु हमारा अभी वो पैसा मिलाने के लिए जो कोई परिणाम कर रहे उसका कर्मबंद होगा वैसा वैसा, एक भी परिणाम बिना कर्मबंद के नहीं जा रहा है अभी। तो यहाँ से पैसा तो कोई नहीं ले जाने वाला है, सब यहाँ ही छोड़ के जाने वाले हैं। इमेजिन कुछ ले जाने की तस्वीर होती तो क्या करते हैं, अरे मुझसे किसी को नहीं, अभी तो कहते हैं कि बाल बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और जब ले जाने की व्यवस्था होती तो सब कुछ उसका एक कुछ बना के चेक बनाई जो कुछ है जिस पद्धति से, एक भी दम इतना ही छोड़ के नहीं जाते। परंतु देखो ये सारा यहाँ ही रहने वाला है, बाल बंगला जो कुछ है, परंतु जो कर्म बांधे हैं वो साथ में चलेंगे, उसका फल होगा।
वो जो भोगने के लिए सारी
ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, और हमारी इच्छा से हमें यहाँ जन्म लेना है वहाँ जन्म लेना है। तो मनुष्य वो इतना दुर्लभ है, अभी हमें मनुष्य होने के लिए कुछ नहीं करना, हम मनुष्य हो चुके हैं। मनुष्यों में जो शास्त्राभ्यास की मुख्यता है, मनुष्यों में शास्त्राभ्यास से हम कर्मों का स्वरूप का निर्णय कर सकते हैं। लौकिक में आप इतने चतुर हो कि अपना देश छोड़कर यहाँ एस्टेब्लिश हुए हैं, तो बुद्धि तो है आपके पास बहुत, और ये सारा लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं है, और आपको कुछ लेना नहीं, किसी रिचुअल का नाम धर्म नहीं है। हम मैं स्वयं जीव हूँ और शरीर भिन्न है, या तो एक कॉम्बिनेशन है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में H2O, तो वाटर कैसा है, तो कहेंगे द्रव रूप है, लो उसका फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में पानी जो आपको बुझाता है, और उसी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसके आप क्या उसके आग बढ़ाते हैं, और वो गैसीय फॉर्म में है, तो H2O फॉर्म में रहते हुए ऑक्सीजन से स्टडी कर सकते ही है, और उससे भिन्न भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ मनुष्य है, तो यहाँ एक जीव द्रव्य है, कर्म बंधे हुए है, और यहाँ शरीर की रचना हुई है। इसमें हम ज्ञान के लेवल पर तो न सोच सकते हैं कि नहीं कि जीव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसको भिन्न कैसे किया जाता है शुद्ध स्वरूप में, जो सिद्धों ने किया है, अरिहंतों ने वो मार्ग बताकर वो सिद्ध हो चुके। तो ये जीव प्योर जीव फॉर्म को प्योर फॉर्म में कैसे हम उसको भिन्न कर सकते, और ये सब ज्ञान की लेवल पर होगा, उसके लिए किसी रिचुअल की यहाँ कोई बात कहीं पर भी नहीं लिखी है। रिचुअल हो गए, भगवान की पूजा होगी, क्योंकि उन्होंने मार्ग बताया इसलिए उनके हम पूजा करेंगे, परंतु मूल में ये अपना स्वरूप जानना आवश्यक है, इसमें इतना ही करना है। और हमारा स्वरूप क्या है, जानना, किसको जानना, सब कुछ जानना, तो ये जानने में ये सब मार्ग उठा के आए, यानी इसके जानने से हमारा कोई नुकसान तो नहीं, हम सबसे बातें जानते हैं। सर्वज्ञ तो जिसका निर्णय है सर्वज्ञता, सर्वज्ञ के ऊपर जिसकी श्रद्धा है, उसने सर्वज्ञ ने जानी हुई कही हुई बातें हम जान रहे, जितना वो डायरेक्ट जान रहे उतना हम इनडायरेक्टली जान रहे। हाँ, परंतु वो चला गया ना, यही ये जो बाहरी ज्ञान है ना, बाहरी ज्ञान तो हर भाव का हर भाव में चला जाएगा, पर एक बार आत्मज्ञान कर लेंगे तो आत्मज्ञान तो हर भाव में आगे चलेगा, उसको कहेंगे सम्यक्त्व की प्राप्ति। एक बार समित्व की प्राप्ति होगी, आत्मा का ज्ञान हुआ, तो आत्मा में जितनी स्थिरता बढ़ेगी, तो जो हमारी जो लेवल अभी उसके गुण स्थान वगैरह कहते हैं, तो उसकी जो बात होगी तो हम अधिक स्थिरता होगी, तो मुक्त दशा प्राप्त होगी। ये प्रोसेस चलेगा, दो चार भाव में मिलकर चलेगा, पर एक बार आत्मा ज्ञान हुआ और अगर वो उसमें से नहीं छूटते हैं तो वो तो थोड़े भाव में मोक्ष हो जाता है। कोई देगा नहीं हमको प्रमोशन, और प्रमोशन किससे करना, प्रमोशन हम लौकिक में ऑफिस में दूसरे से हम बढ़ गए, अब ये अपने ही पूर्व पर्याय से हम अधिक बढ़ रहे हैं, अपने में होने वाला
शुरुआत चालू।
हाँ, शुरुआत, मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, मार्ग शुरू हुआ, उसका रोड चालू हो गया। गिर सकते क्यों, क्योंकि हमें वो फिर छूट जाते, फिर वो पहले के लिए जैसे मोह शुरू होता है, इसलिए गिरता है, गिरना ही आवश्यक है, ऐसी तो बात है ही। हाँ, अपना तो समय हो गया ना। हाँ। तो यहाँ जो हमने ये तो भौगोलिक तो बात हम इसलिए की कि हमारे इस संबंध में बहुत कंफ्यूजन चलता है ना, मालूम नहीं, हम तो कहते हैं कि कर्मभूमि ऐसा होता है, भूभूमि में ऐसा है, परंतु ये जीव कैसे कैसे ने मनुष्य भी कहाँ रहते क्या, ये सब यहाँ चर्चा है। अभी अपने पास समय नहीं है, क्या करें। तो विदेश क्षेत्र हमने देखे थे, देखो आप विदेश क्षेत्र का जरा डिटेल निकालो, आपके पास चार नंबर है, 12-1 और 12-2, 12-1 निकालना, 12-1, ये जो हमने यहाँ देखा था ना, अभी जो पूर्व विदेह हमने देखा था, दक्षिण और उत्तर ऐसे दो उसमें बात करते और 8-8 उसमें, तो आपके पास जो 12 नंबर एक का चार्ट है उसमें 1-2-3-4 ऐसे लाल अक्षरों में लिखा है, 8 ऊपर लिखे और 9 नीचे, 9 से 16 तक लिखे है, तो एक नंबर लिखा है वो पूरा ही एक विधेय क्षेत्र है ऊपर से नीचे तक। देखो यहाँ मैं आपको इसमें बताती हूँ, तो आपको ये यहाँ तो सारे वन वगैरह थे, इधर मेरू पर्वत था, फिर आगे इतने सारे भद्रशाल वगैरह, ये पूरी वन वेदी है और इसके आगे विधेय क्षेत्र इतना पूरा है, इतना बड़ा, तो उसमें एक बीच में नदी बहती है, पूर्व की ओर सीता नदी बहती है, ये उसके उत्तर की ओर यहाँ एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी और एक पर्वत और यहाँ वन वेदी, इसके द्वारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 विधेय है, यानी पूरा ऊपर से नीचे तक एक विधेय क्षेत्र है, और इसमें क्या है, एक बीच में ये आर्यखंड है, क्योंकि ये विधेय में ये बीच में जो आड़ी लाइन है ना, इसको विजयाल पर्वत कहते हैं, ये पूरा ऊपर से नीचे एक विधेय क्षेत्र है, ये विजयाल पर्वत है, दो हो गए टुकड़े, अभी इसमें एक नदी ऐसी यहाँ से एक नदी ऐसी ऊपर से नीचे तक बहती है, ये ऊपर से ये पर्वतों में से नदी नीचे तक बहती है, दूसरी नदी नीचे तक बहती है, यानी एक पर्वत ये दो नदियाँ, इसके कारण नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंड हो गए, उसमें से ये बीच वाला जो है ये आर्य खंड है और बाकी 5 मलेच्छ खंड है। मरु क्षेत्र में भी ऐसे हो गए, 1 आर्य खंड और 5 मलेच्छ खंड, ये जो धर्म की वगैरह बातें होती है, तीर्थंकर विराजमान होते हैं, वो सारे आर्य खंड में ही होते हैं। वो भारत देश आर्य खंड, अब हमें जो भारत देश मालूम है ना वो बहुत छोटा है, ये भरत क्षेत्र का जरा निकालना भैया, 6 नंबर का, उसमें भी 6 खंड बताएंगे आपको, आपके पास 6 नंबर का है वो निकाले, हाँ हाँ वो 6 एक्चुअली हमने जम्मू द्वीप 1 लाख योजन का है उसके 190 जब टुकड़े किए थे, तो ये ऊपर जो दिखता है ये पीला ऐसा ये भरत क्षेत्र दिखेगा, ये इन प्रोपोर्शनल ड्रॉइंग कर बनाए, प्रोपोर्शनल ड्रॉइंग बनाएंगे तो इसको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, जो ऊपर आधी लाइन सीधी दिख रही है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भरत क्षेत्र है, परंतु उसके अंदर स्ट्रक्चर समझ में आवे इसलिए उसको डिस्टॉर्ट करके बड़ा बनाएंगे, इतना कर्वेचर नहीं, उसका कर्वेचर तरह इसका लंबा है, परंतु उसको ऐसा गोल करके समझाने के लिए उसको गोल बनाए, समझ में आती है ना बस, तो ये क्या है, तो ये भरत क्षेत्र इतना पीला है, वो पूरा ही भरत क्षेत्र है, और उसके ऊपर जो हिमवान पर्वत है उसमें यहाँ एक पद्म ड्रेनेज सरोवर है बड़ा, अभी उसमें से ये गंगा नदी निकलती है यहाँ इधर तक बढ़ती है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ तक आती है, हमें जो अभी का भारत मालूम है उसकी गंगा सिंधु नाम ही वही है, परंतु वो इतना ही भरत क्षेत्र नहीं है, ऐसा नहीं है, हम आपको बताएंगे, देखो ये भरत क्षेत्र जो पूरा है ना, तो उसमें भी हमने देखे ये दो नदियाँ बहती है, भरत क्षेत्र में भी एक विजयार्ध पर्वत है बीच में, विजयार्ध पर्वत, तो ये ऊपर से दो टुकड़े हुए और ये नदी ऐसी आई है, तो कितने टुकड़े हुए देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 5 जो है वो मलेच्छ खंड है और ये पूरा ही आर्य खंड है, आर्य खंड में भी ये जो हम 6 कालों का परिवर्तन देखते हैं वो मात्र आर्य खंड में देखते हैं, अब देखो यह आर्यखंड है, ये यहाँ का लवण समुद्र है, नीचे ये सारा लवण समुद्र है। तो ये आर्यखंड जो है उसमें ये विशेषता होती है, जब कालों का परिवर्तन होता है तो आपने देखा होगा जब गर्म तवे के ऊपर आप रोटला या जैसे रोटली नाखेंगे इसके डालने में क्या होता है, सर बीच में ऊपर आता है ना सब गोल, तो ऐसे ये भौगोलिक परिस्थिति ऐसे बनती है कि ये आर्यखंड में ये सब उभर के ऊपर आता है ऐसे ऊपर। तो ये जो तीसरे चौथे काल में जो कोई विशेषता बनती है, मेघ बनना शुरू होता है, बारिश शुरू होती है, नदी के बहना होता है, पूर आते हैं, ये सब ये ऐसे उभरने से होते हैं और हमें जो ऐसा गोलाकार जो सुख भी दिखाई देती है वो उसी के कारण है। अब इसमें जो है आर्यखंड, हमारी पूरी जो नॉन पृथ्वी है वो भी आर्यखंड में है, क्योंकि मलेच्छ खंड में जो कालों के वेरिएशन है वो जैसे चौथे काल के शुरू से अंत तक है उतने ही होते हैं, पर हमारे यहाँ आर्यखंड में छह कालों का परिवर्तन हमने देखा था। चौथे काल में शुरू से अंत तक हाइट बॉडी कितनी होती मालूम है ना, हमारे यहाँ पहले चक्रवर्ती का कितना था 500 धनुष योजन 500 धनुष, और उसके अंतर्गत और आयु कितनी थी 1 करोड़ पूर्व थी, 1 करोड़ 84 लाख उनकी थी आदिनाथी, पर मैक्सिमम कितनी 1 करोड़ और चौथे काल के अंत में कितनी 120 लाख एवरेज, और हाइट कितनी थी 500 धनुष और चौथे काल के अंत में घटते 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 महावीर की 7 लाख। मलेच्छ खंड में क्या होगा, कितना होता है परिवर्तन, अभी हमारे यहाँ पांचवे काल में क्या हो रहा है, हाइट और बढ़ कम हो रही है, अभी 7 हाथ यानी कितना 10 फुट का था वो भी घटते घटते चल रही है अभी है ना, और एवरेज एज भी घट रही है पंचम काल में, परंतु अभी मलेच्छ खंडों में वही चौथे काल की हाइट बॉडी चलेगी। क्यों मैं कहना, वहाँ कितना वेरिएशन होता है, चौथे काल के शुरू से अंत तक जितना वेरिएशन है इतना ही मलेच्छ खंडों में होता है, क्योंकि जब भरत क्षेत्र में यहाँ आर्यखंड में भरत चक्रवर्ती गया था तो उसने आपने सुना होगा मलेच्छ कन्याओं के साथ भी शादी की, तो जब भरत पहला चक्रवर्ती गया था तो उसके हाइट बॉडी की कन्या होगी ना, और जब चौथे काल के अंत में कोई चक्रवर्ती जाएगा तो उसको 500 धनुष वाली कैसे चलेगी तो उसके एवरेज वाली उसकी हाइट वाली होगी, तो यहाँ तो वेरिएशन उतना ही होता है चौथे काल जितना। क्या अमेरिका में इसको मलेच्छ देश करेंगे आप, क्या चौथे वाले काल के जैसे नहीं, अभी 10 हाथ वाले है क्या, 10 फुट वाले है क्या, हाँ तो इससे बहुत सारी आने की बातें है। ये अनार्य क्यों कहते हैं, ये भी यहाँ आर्य और अनार्य क्यों कहा, क्योंकि यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होती है, चक्रवर्ती जाते हैं वहाँ की कन्याओं को लाते हैं तो उनसे पुत्र होते हैं, तो तब जाके वो धर्म की बात सीखते भी मुनि भी हो सकते हैं, तो यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, जैसे हमारे यहाँ ट्राइब्स वगैरह रहते हैं उनकी कुछ नहीं, इसलिए यहाँ अनार्य कह देते हैं, परंतु शास्त्र की अपेक्षा बात करेंगे तो इनको अनार्य नहीं करेंगे कहीं भी हम अमेरिका वालों में है, और आप स्वयं धर्म की बात जानते हो और साक्षात भगवान को विराजमान किया है तो ये अनार्य कैसे होगा, और ये कहीं मरने से कुछ नहीं होता है, गद्दे पर मरो या कुर्सी पर मरो या जमीन पर मरो या चटाई पर मरो, हमने तो बाहर से ही हमारा धर्म होता है मान लिया, हम अपनी आत्मा की बात समझते हैं, आत्मा को पहचानते है, और आत्मा को जानते हुए चिंतन में हम मर जाए तो क्या है, एक समय का भी डिफरेंस नहीं, यह मनुष्य है तो दूसरे समय में देव हो जाएगी, ये जहाँ जो कर्म बांधा है, जीव को मरने के लिए एक समय भी बीच में फुर्सत नहीं है, क्या ये आपको फुर्सत नहीं, वो बात अलग है जीव कहते किसको है, जो अनादि से जीता आया है, वर्तमान में जी रहा है, भविष्य में अनंत काल तक जीता रहेगा, उसको जीव कहते हैं। तो ये मरण से हम रोते क्यों है, कौन मरता है बहन, जीव मरता है कि शरीर, शरीर जिंदा कब था, शरीर जिंदा कब था, वो जिंदा नहीं था तब भी वो जीव नहीं था, ये अभी भी नॉन लिविंग है, ये जड़ है, पुद्गल है, वो काटता है तो जीव को समझता है, वो जानने वाला जीव है। यहाँ पर भी शरीर में जो जानने का कार्य हो रहा है वो शरीर नहीं कर रहा है, जीव कर रहा है। शरीर तो अभी जड़ है, ये अभी भी मुर्दा है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ तो जो कुछ जानने वाला है, निर्णय करने वाला है, वो सब कुछ मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ। जानने वाला चेतन तत्व तो मैं हूँ। मैं इसमें से चली जाओ तो इसमें कितने सेंटर है, बॉडी को हिलाओ, बॉडी को निकालो, कहेंगे ना सब उसको बॉडी कहेंगे। अभी क्या है, अभी भी ये बॉडी है, जीव की उसने शरीर जुदा ही है, वो अचेतन है। हमने इसको मैं हूँ मान लिया है, ये सब गड़बड़ बना से शुरू हो। अब बहुत है बगले जैसा, क्या करे, अपना समय होगा। ये तो केवल जम्मू द्वीप का देखा, ऐसे आगे के भी ये बात चलेगी अपनी। अभी दो चार दिन है ना, वो सब बातें चलेगी। बोलो 2400 भगवान की।
Thank you.